ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஏக் தோ சாஸ்திர மே படு கர்கே சந்தோ கோ ஜானா ஜாய் பஹச்சானா ஜாய். ஆர் கோய் கோய் அத்யந்த பாக்யசாலி ஹோதே ஹே जो उन महान पुरुषों को साक्षात देख करके उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैं अपने आपके भाग्य की सराहना करना चाहूंगा यहां पर कि जो लक्षण शास्त्रों में हम लोग महान पुरुषों के पढ़ते हैं, ज्ञानियों के, उन महान पुरुषों को अपनी आंखों से दर्शन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ, उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। कोई जन्मांतरीय पुण्य होगा, नहीं तो इतना सुंदर संयोग प्राप्त होना कोई छोटे पुण्य का काम नहीं है। महाराज श्री जी के जीवन से बहुत कुछ मिला। मैंने महाराज श्री जी के प्रवचन से जितना नहीं लिया होगा, उससे अधिक उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा प्राप्त की है। महाराज श्री जी का जो जैसा अभी आप सुन रहे थे, सबसे बड़ी चीज महाराज श्री जी ने कभी असत्य को स्वीकार नहीं किया। कैसा भी व्यक्ति हो, यदि उसके मुंह से असत्य भाषण हो गया, जरा भी उसको सहन नहीं करते थे। कई लोग तो इस तरह से कहते थे कि महाराज श्री जी को तो गुस्सा बहुत आता है। पर सज्जनों माताओं, मैंने बहुत नजदीक से देखा, महाराज श्री जी को गुस्सा कभी आता था ही नहीं, वो गुस्सा करते थे और गुस्सा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जब महाराज श्री जी क्रोध करते थे ना, शरीर कांपने लगता था, ऐसा लगता था कि हो गया प्रलय। लेकिन बिल्कुल साफ था कि वो भीतर से गुस्सा आया नहीं है, गुस्सा किया गया है, सामने वाले के हित के लिए किया गया है। जिस वक्त किसी ब्रह्मचारी, महात्मा, कर्मचारी पर गुस्सा कर रहे हों और उसी वक्त कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, आप जैसे कोई श्रद्धालु आ गए, आपसे बात करनी पड़ी, तो ऐसे बात करेंगे जैसे इनको तो कभी क्रोध आता ही नहीं होगा। जैसे गंगा जी में स्नान करके निकले हैं, बिल्कुल ठंडा मस्तिष्क, इधर देख करके गुस्सा करेंगे, इधर ठंडे बोलेंगे। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता था कि महाराज जी को क्रोध आता नहीं था, वो क्रोध करते थे, दूसरे के हित के लिए करना पड़ता है। इतना निष्प्रिय है जीवन। देखो, संसार में जो कोई व्यक्ति पैदा होता है, जन्म के समय पता नहीं होता है कि कैसा होगा, लेकिन जन्म उसी का सार्थक है जिसके जीवन का परिणाम सार्थक होता है। बिजनेस शुरू करते हैं, आज लाभ पंचमी है, एक व्यापारी आज से बिजनेस शुरू करते हैं। महाराज श्री जी ने भी आज के दिन से ही अपने जीवन का साधना प्रारंभ किया, एक जीवन लीला प्रारंभ की। लेकिन उस बिजनेस में क्या पाया और क्या खोया, उसका रिजल्ट तो एक वर्ष के बाद आएगा, अथवा यूं समझ लो कि मार्च 31 को मालूम पड़ेगा कि हम कहां पहुंचे हैं, क्या पाया और क्या खोया है। ऐसे ही जीवन का जो अंत जब आता है, अंतिम समय में मालूम पड़ता है कि इस जीवन में हमने क्या पाया और क्या खोया है। सारे जीवन में महाराज श्री जी ने जो स्थिति प्राप्त की है, उस स्थिति को आखिर के समय हमें देखने का अवसर मिला। जब शारीरिक रूप से महाराज श्री जी काफी अस्वस्थ थे, हम लोग सेवा में रहते थे, एक रोज लेटे हुए अपने कक्ष में बहुत मंद मंद आवाज निकल पा रही थी। धीरे से महाराज श्री जी कहते हैं कि जरा मुझे बाहर ले चलो। स्वयं बैठे होकर के चलने की स्थिति में नहीं थे, महाराज जी का आदेश हुआ कि बाहर ले चलो। तो हम लोगों ने, ब्रह्मचारी लोग और भी थे, महाराज श्री जी को बैठा किया, उठाया और व्हील चेयर के ऊपर गुरु जी को बिठाया। फिर उस व्हील चेयर को मैं स्वयं अपने हाथ से धकेल करके बाहर की तरफ, जो कृष्ण भाई जिस जगह का स्मरण कर रहे थे वो सामने वाले हाल में, एक राउंड लगाया। सिर्फ एक राउंड लगाया, इतने में महाराज जी कहते हैं चलो अंदर ले चलो। ध्यान दीजिए कितना, स्थिति कैसी थी। गुरु जी को हम भीतर ले गए, व्हील चेयर से उठाया, पुनः बिस्तरों के ऊपर लेटा दिया। अब लेटे हुए गुरु जी फिर कहते हैं अच्छा अंदर ले चलो। अब हम धर्म संकट में पड़ गए, अब कहां अंदर ले जाएं, बिस्तरों पर लाकर के लेटा दिया। मैंने कहा महाराज श्री जी आपको अंदर ले आए हैं, आप बिस्तरों पर लेटे हुए हैं। मौन हो गए। थोड़ी देर में फिर कहते हैं अच्छा अंदर ले चलो। दो तीन बार बात दोहराया कि महाराज जी आप अंदर सोए हुए हैं, मगर ऐसी धुन लग गई शारीरिक अस्वस्थता के कारण है। गुरु जी को इतना ख्याल नहीं रहा कि यह शरीर बिस्तरों पर है, कक्ष में है, व्हील चेयर पर है, बाहर है कि भीतर है, यह भी जिनको होश नहीं था। शारीरिक स्थिति ऐसी बन गई थी, बार बार वही गुरु जी का जो सेवक जिसको अभी स्मरण कर रहे थे मणि आया, मणि को कहा कि महाराज जी को धुन लगी हुई है। महाराज जी कुछ बोले तो मणि सीधा बालक हां 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 करे। इतने में राजपुरोहित जी आ गए, ये स्वयं साक्षी है, कहा कि आज तो ऐसे धुन लगी है महाराज जी, कहते अंदर ले चलो, अब कहां ले जाएं। तो इन्होंने कहा कि महाराज जी को दिमाग में एक ऐसी धुन लग गई है, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ सत्संग की बात छेड़ो। तो जैसे राजपुरोहित जी अभी शास्त्र के ही मंत्र श्लोक आदि बोलते हैं, संभवतः इन्होंने उसी समय कारिका की कोई कारिका की पंक्ति बोली और कहा महाराज जी आपने इसका ऐसा अर्थ किया था, ऐसे समझाया था। सुनाने लगे तो महाराज जी का ध्यान उधर गया, महाराज जी हां भरने लगे। इन्होंने अपनी बात पूरी की, फिर मुझे कहने लगे कि स्वामी जी आप भी महाराज जी को कुछ सुनाओ या पूछो, ध्यान डाइवर्ट करना था। तो मैंने महाराज श्री जी को एक कटश्रुति की एक पंक्ति बोली और पूछा कि ये पंक्ति कहां की है। मैंने कहा कि तम अक्तो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मन। ये पंक्ति बोलकर के मैंने महाराज श्री जी से पूछा कि महाराज जी ये कौन से शास्त्र की पंक्ति है। तमाक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान पश्यति मात्मान, ये कहां की पंक्ति है। तो महाराज श्री जी कहते हैं ये कठोपनिषद की श्रुति है। सोचिए कैसी स्थिति थी, मानव जीवन पाकर के महाराज जी किस स्थिति पर पहुंचे हैं, रिजल्ट वहां देखिए। शरीर का पता नहीं है कि शरीर बिस्तरों पर है, व्हील चेयर पर है, कक्ष में है कि बाहर हाल में है, यह पता नहीं है। उस स्थिति में भी यह मालूम है कि यह पंक्ति कठश्रुति की लिखी हुई है, कठोपनिषद में है। कल्पना कर लीजिए कि महाराज श्री जी सारे जीवन किस में जिए हैं। हम लोग शरीर में जीते हैं, वो महापुरुष शास्त्र में जिया है, तब जाकर के उनकी स्थिति बनी। शास्त्र उनका शरीर था, शास्त्र उनका आधार था। एक परमार्थ सत्ता को परम महत्व देते हुए भी महाराज श्री जी का जो व्यवहार पक्ष था बड़ा प्रबल देखा मैंने, बहुत प्रबल देखा। नियम से स्वाध्याय आश्रम की इतनी प्रवृत्ति रहती रही और एक तरह से यूं समझो कि साधना सदन में वो राष्ट्रपति शासन था। पदार्था फार्म से लेकर के, गौशाला से लेकर के, भोजनशाला से लेकर के और मंदिरों से लेकर के आश्रम पर्यंत कहां क्या हो रहा है, किसको क्या करना करवाना, ये सब कुछ संचालन महाराज श्री जी की दृष्टि के नीचे होता था। सब कुछ उनकी दृष्टि के नीचे होता था। इतनी विस्तृत संस्था, लेकिन दोनों समय का जो स्वाध्याय होता था, निरंतर प्रश्नांतर का स्वाध्याय, ऋषिकेश में हरिद्वार में सैकड़ों हजारों आश्रम मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये ज्ञानधारा स्वाध्याय का जो क्रम है, परंपरा है, कैलाश आश्रम को छोड़ दें तो साधना सदन के सिवाय कहीं नहीं मिलेगी। निरंतर परंपरा चलती थी। सबसे बड़ी विशेषता रही, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन जो ही स्वाध्याय का समय होता, कभी भी मैंने महाराज जी से को स्वाध्याय में आने में देर करते हुए नहीं देखा। अधिक से अधिक कभी कभी वो भी वर्ष में कोई दो तीन चार चांस होंगे जो दो या तीन मिनट गुरुजी लेट हो गए हों, नहीं तो ठीक समय पर आकर के स्वाध्याय करवाते। स्वाध्याय का प्रारंभ, स्वाध्याय का समापन, प्रातः काल का जो नियम, साधना सदन मैंने शुरू शुरू में गया तो सोचा कि साधना सदन में मैंने समझा कि योग साधना कराते होंगे, बाबा रामदेव की तरह कोई अभ्यास करवाते होंगे, कुछ होता होगा, लेकिन वहां गया तो कोई नहीं। सवेरे चार बजे उठो, स्नान करो, पांच बजे आरती में मंदिर में जाओ और उसके बाद में थोड़ी देर में अपना कुछ दैनिक जो स्वयं का करना कर लो, फिर चाय की घंटी लगी जिसको पीने पी लो, फिर विष्णु सहस्त्र नाम की घंटी लगेगी पाठ में बैठ जाओ, फिर स्वाध्याय होगा, स्वाध्याय के बाद में कोई आश्रम की सेवा कर लो, 11 बजे भोजन पंक्ति कर लो, सेवा करनी वो करो, बाकी जाकर के खर्राटे मारो, वही 4 बजे फिर स्वाध्याय में सत्संग में चले जाओ, वो शाम होते ही फिर आरती की घंटी लगी, 1-1.5 घंटा महिमन स्त्रोत्र पाठ सहित आरती में बिता दो। मैंने कहा यहां और कौन सी साधना है। शुरू शुरू में मेरी समझ में नहीं आई थी कि ये सबसे बड़ी साधना है। अपने दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेना ये बहुत बड़ी साधना है। कई सारे महात्मा आते, गुरुजी इतने संत प्रेमी थे, कोई भी संप्रदाय का संत हो, सन्यासी हो, वैष्णव हो, उदासीन हो, अन्य संप्रदाय हो, कोई भी संत हो, सबके लिए साधना सदन आश्रम खुला, लेकिन शर्त यही होती थी कि यहां की जो दिनचर्या है उसमें आपको नियमित रहना पड़ेगा। जो संत होते थे वो अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेते थे और बाकी जिनको अनुकूल नहीं पड़ता अपने आप रास्ता पकड़ लेते थे। गुरुजी स्वयं उस नियमों में चलते। नियम से गंगा स्नान करना, स्वाध्याय, गंगा स्नान, गौ सेवा, गौ दर्शन, मंदिर दर्शन, विद्यार्थी सेवा, ये सब कुछ करते हुए भी और अपने जीवन को इतना संयमित रखा। भोजन की दृष्टि से जरा देखिए, संसार में सबसे अधिक खटपटी जीव करती है। साधना सदन में जो भी भोजन बनता था, महात्माओं की पंक्ति के बीच में बैठ करके गुरुजी वहां भोजन पाते थे, उनका कोई स्पेशल भोजन नहीं बनता। 24 घंटे में एक बार भोजन करना, और एक बार भोजन करने में भी प्रथम बार थाली में जो आ गया उसके बाद दोबारा कोई प्रश्न वाला एक चीज में नहीं लेनी है। 24 घंटे में एक बार भोजन, एक बार भोजन में एक बार थाली में आया हुआ भोजन लेना और जैसा बना वही भोजन लेना। बड़े उनके नियम थे। संध्या हो गई उसके बाद में चबाने की कोई भी चीज नहीं लेनी मुंह में। इतना जरूर होता था कि आरती के बाद में जो प्रसाद बांटा जाता, भगवान को भोग लगता, वो प्रसाद जैसा भी हो उस प्रसाद को प्रसाद करके गुरुजी लेते, उसको खाने की चीज समझ करके नहीं लेते थे। इतने उनकी एक व्यवस्थित जो दिनचर्या थी, संतों के तो बहुत प्रेमी। इस प्रकार गुरुजी की जो शास्त्र निष्ठा है, गुरुजी का संत प्रेम है, उनके संबंध में जितना भी मैं बोलूं उतना कम है। हर तरह से महाराज जी का एक बहुत बड़ी विशेषता आपको बताएं गुरु जी के जीवन की, वो किसी की निंदा सुनना कतई पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं बैठ करके काम ही यही करते हैं, फलाना ऐसा, फलाना वैसा, वो महात्मा ऐसा, वो ब्रह्मचारी ऐसा, वो फलाना भक्त ऐसा, वो ऐसी, वो वैसा, कथा ही चलती है। और सच्ची तो ये है कि हम महात्मा लोगों में ऐसे ऐसे होते हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, उनको पूरे देश की डाक उनके पास में आती है, मीडिया वाले भी पीछे है, सब कुछ उनको मालूम होता है, इतनी जानकारी इधर उधर की दुनिया की रखते हैं। परंतु महाराज श्री जी के सामने कोई इधर उधर की बात करते, यदि उसके महात्मा का जो व्यवहारिक लेवल है वो सामान्य महात्मा का है, तो गुरु जी सीधे मना कर देते, फालतू की बात मत करो, जो आपको करनी वो बात करिए, किसी की निंदा करना ठीक नहीं। कोई ऐसे व्यवहारिक दृष्टि से समान दर्जे के कोई महात्मा होते, मल्लेश्वर आदि होते, कोई कथाकार होते, एक दो मिनट तो महाराज जी मुस्कुराते मुस्कुराते उनकी बातों को सुनते रहते, फिर देखा कि इसकी तो कथा पूरी होने वाली नहीं है, हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती जा रही है, महाराज जी उसकी बात को काट करके कोई अच्छी बात शुरू कर देते। किसी की निंदा करना पसंद नहीं करते। महान पुरुषों में सर्वत्र गुण दृष्टि, चाहे किसी मजहबी संप्रदाय आदि का क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो। एक बार मेरे सामने की बात है, एक स्वाध्याय के समय एक संत ने पूछा कि महाराज जी ये जो ज्ञानी संतों के लक्षण आते हैं, स्थित प्रज्ञा आदि के लक्षण आते हैं, गुणातीत पुरुषों के लक्षण आते हैं, तो इस समय भी कोई इस तरह के गुणातीत स्थित प्रज्ञ महापुरुष कोई है? कोई है? महाराज जी ने सहज में कहा, क्यों नहीं, इस समय भी है। वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़े निष्ठावान महापुरुष हैं, मेरे सामने की बात। सब जगह ऐसे दृष्टि महाराज जी की, एक पावन दृष्टि, कोई स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं। जो कुछ चलता था, जैसे ब्रह्मचारी जी महाराज कहते हैं, उनकी एक ही धारणा थी, ईश्वर के संकल्प से चल रहा है, जो हो रहा ईश्वर के संकल्प से। मुझे अच्छी तरह से याद है, लगभग 90 के आसपास यही लाभ पंचमी का दिन था, इसी मंच पर महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, महाराज जी स्वयं यहां विराजमान थे, मैं ब्रह्मचारी था, सेवा में रहता था, तो मैंने इस तरह से महाराज जी की जो क्रियाकलाप है, आश्रम की संस्था का विस्तार आदि है, उसकी कुछ बात यहां मंच पर बोल दी, बोलना ही था, उनकी विभूति थी, उनका ऐश्वर्य था। कुछ नहीं बोले गुरु जी यहां पर, यहां से प्रेम कुटीर में कन्हैया लाल जी के फ्लैट में रहते थे, वहां जाने के बाद भी कुछ नहीं बोले। शाम को विश्राम के बाद 3 बजे जब उठे और मैं गुरुजी के पास में कक्ष में गया, तब मुझे कहते हैं कि आज तुमने बड़ी गलती कर दी है। मैं तो एकदम डर गया, सहम गया कि मैंने क्या गलती की। बोले वहां मंच पर जाकर के तुमको ये सब बोलने की क्या जरूरत थी कि वहां विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां गौ सेवा होती है, वहां वही मंदिर सेवा होती है, फलाना होता है, ये सब कहने की कहां जरूरत थी। तो मैंने कहा महाराज जी, मेरे तो जो दृष्टि में आया देखा, मैंने वही निवेदन किया। बोले तुमने तो निवेदन कर दिया, लेकिन वो लोग गणित लगाएंगे कि चेले को पढ़ा करके लाए हैं कि आश्रम की गतिविधियों की जानकारी देना ताकि सेवा हो, लोग ऐसा अर्थ लगाएंगे। बताइए कितने सावधान थे महाराज जी भीतर से। मैं कहां तक कहूं, महाराज जी का समय बर्बाद कर रहा हूं। सच्चाई तो यही है कि रोम रोम में एक संकल्प संकल्प में महाराज जी स्वयं विराजमान है। जो कुछ मैं निवेदन कर पा रहा हूं उन्हीं की प्रेरणा है। आज के इस मंगल अवसर पर उनके पावन स्वरूप को कोटि से वंदन करते हुए वक्तव्य को विराम दूंगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम,
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। परमादरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय महाराज ने महाराज कर्तव्य परायण और स्वाध्याय परायण दोनों ही थे, ये उनके जीवन में देखा जाता है। क्योंकि अंतिम दिन 2005 में तभी बोलते थे, बेटा यदि मेरा शरीर भी शांत हो जावे, ये ज्ञान यज्ञा रुकना नहीं चाहिए। और दूसरा कर्तव्य परायण में अक्षय तृतीय के दिन वहां मंदिर का उद्घाटन था, महाराज बिल्कुल चल नहीं सकते, ऑक्सीजन चल रहा था। महाराज से कहा, महाराज मंदिर उद्घाटन है, हम चलेंगे। महाराज के हाथ में ही उद्घाटन हुआ था। मैं आगे प्रार्थना करता हूं, परमादरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय महामंडलेश्वर इस सभा के अध्यक्ष जी महाराज, उनसे प्रार्थना करता हूं करबद्ध, वे भी अपना आशीर्वचन के द्वारा हम लोगों को कृतार्थ करें। श्री महाराज जी,
मन ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय इस आश्रम के प्राण स्वरूप पूज्य श्री परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय जिनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, महाराज श्री हमारे समादरणीय स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज, स्वामी दिव्य चेतन जी महाराज, यति वृंद, भक्तिमती देवियों तथा सज्जनों, महाराज जी के बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन काम है। त्यागमूर्ति जी महाराज के साथ में मैं 1974 के आसपास आया। उस समय महाराज जी का स्वरूप देख के जल्दी महाराज जी के सामने कोई खड़ा तो नहीं हो सकता था। बात करना तो काफी कठिन काम है, लेकिन बड़े महापुरुषों का जो जैसे शेर के सामने शेर का बच्चा बिना डरे जा सकता है, इसी प्रकार महापुरुषों का प्रेम था तो उनके साथ में जाने आने का मौका। बता रहे थे दिव्य चेतन जी महाराज श्रीमद् भागवत में जो तृतीय स्कंद का दृष्टांत, तृतीय स्कंद का ही है ना, कपिल का दृष्टांत। हाँ, तितिक्षवाहा कारुणिकाहा, संत के अंदर तितिक्षा होती है, तितिक्षा। तितिक्षा क्या चीज है कभी आपने सोचा? मोगरे के फूल में कितनी सुगंध होती है, लेकिन वो जो सुगंध है वो फर्टिलाइजर की खाद से बनती है, मालूम है आपको? अब फर्टिलाइजर की जो खाद होती है उसमें बड़ी दुर्गंध होती है, उस दुर्गंध को सुगंध कौन बनाता है? उस दुर्गंध को सुगंध बनाता है वो मोगरे के पेड़ की तपस्या। भोग सुगंध को दुर्गंध बनाता है और तप दुर्गंध को सुगंध बनाता है। एक महापुरुष त्यागमूर्ति की इससे बड़ी देन क्या हो सकती है कि यहां पर प्रेमपुरी जी महाराज को ले आए? इससे बड़ा क्या उपकार हो सकता है? मैं कभी कहता हूं इस तीसरे माले पर जब आते हैं तो मुझे आभास होता है कि प्रेमपुरी जी महाराज यहां पर हैं। लेकिन अपने आचार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, ये तभी हो सकती है जब आप सही हैं। महाराज जी की हमने कुछ विशेषता देखे हैं। एक बारी की बात, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं, करीबन 76-77 की बात बता रहा हूं। पंजाब से कोई संत आए और वो सब जैसे जानते हुए नहीं, आजकल के वेदांती सब आप लोग बैठे हो, असी ब्रह्म और तुसी ब्रह्म वाले सब, हाँ सब इसी अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है। तो कुछ बात करने लगे महाराज जी से कि महाराज जी इतने मंदिर है, ये पूजा पाठ की कुछ बात करने लगे। महाराज जी ने इतना सुंदर दृष्टांत दिया, महाराज जी कहे देखो हर की पैड़ी में घाट है। बोले हां महाराज घाट है। जब नहाने के लिए जाते हैं ना, जो आदमी तगड़ा होता है वो सीधा जाकर के नहाके के दो डुबकी मार के तुम नहीं जाना सीधा, नहीं तो बह जाओगे, नीलधारा पहुंच जाओगे, वहां समाधि लग जाएगी। तो उसके लिए वो खुंटा बनाया रहता है, क्या वो जो लगाया होता है, क्या बोलते हैं उसको, सांकल लगाए होते हैं, ऐसे लगाए होते हैं।